આત્માનુશાસન લેક્ચર નંબર 82 ઓમ નમઃ સિદ્ધેવ્ય ઓમ નમઃ સિદ્ધેવ્ય ઓમ નમઃ સિદ્ધેવ્ય ઓમ શુદ્ધાત્મને નમઃ નમો અરિહંતાણં નમો સિદ્ધાણં નમો આયર્યાણં નમો વર્ચાયાણં નમો સૌવસાહૂણં લક્ષ્મીનિવાસનિલયં વિલીનવિલયં નિધાય હૃદિ વીરમ આત્માનુશાસનમહં વક્ષે મોક્ષાય ભવ્યાનામ. પૂજ્ય શ્રી ગુણભદ્ર આચાર્ય રચિત યહ આત્માનુશાસન નામક ગ્રંથ હૈ ઉસ પર ક્ષુલ્લક મનોહરજી વર્ણી જો સહજાનંદજી ઉનકે પ્રવચન હુએ હૈ ઔર ઇસ આત્માનુશાસન પ્રવચન પુસ્તક દૂસરી ઉસમે હમ પૃષ્ઠ સંખ્યા 92 પર આગે 92 109 નંબર કા શ્લોક અભી પઢેંગે. અભી હમ પહેલે ઉસકો જાંચ લેતે ઇસમે સે અનુષ્ટુપ છંદ હૈ યે. અભુક્ત્વાપી પરિત્યાગાત સ્વોચ્છિષ્ટમ વિશ્વમાસિતમ યેન ચિત્રમ નમસ્તસ્મૈ નમસ્ કૌમાર બ્રહ્મચારીણે. યહાં ચારિણો લિખા હૈ. ચારિણે ચારિણે ચાહીએ ઉસકો નમસ્કાર કરતા હું. ઉસમે ક્યા હૈ ચારિણે હૈ ના અભી લઘુ તત્વ સ્ફોટ ક્યા લાય આત્માનુશાસન નહીં લાયા લઘુ તત્વ સ્ફોટ નિકાલા ના બ્રહ્મચારી ને હોના ચાહીએ ચારિણે ને ને નો નહી નો લિખા હૈ ને ચાહીએ આપને ક્યા લિખા નમ ને હા બાણ વાલા નો કે બદલે ને પઢેંગે ઇસકો. અભુક્ત્વાપિ પરિત્યાગાત સોષ્ટિષ્ટમ વિશ્વમાસિતમ યેન ચિત્રમ નમસ્તસ્મૈ કૌમાર બ્રહ્મચારિણે. કૌમાર બ્રહ્મચારીઓ કો પ્રણામ. ચારિણે નમઃ. હા જો જીવ ઇન ભોગ હા 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 ટોરમલજી કા અર્થ નહીં પડા હમને ભૂલ ગયે. यहो आश्चर्यकारी कार्य है जिह जीव यानी जो जीव न भोगी करी ही विषयनी का त्याग तई समस्त विषय अपनी झूठी समान किया तिस कुमार ब्रह्मचारी के अर्थी हमारा नमस्कार हो. यानी कोई भोगी नहीं उसके पहले सब कुछ छोड़ दिया वो सर्वोत्कृष्ट है ना त्यागी. पहले बताया था सर्वोत्तम त्याग को बताएंगे करके ભાવાર્થ. પૂર્વે તીન પ્રકાર ત્યાગી કહે હૈ તીન વિષય એને ઉનમે જાકે ભોગ સામગ્રી કા નિમિત્ત આની બન્યા હૈ અર વિરાગ તાતે ઉનકો બિના ભોગ કિયે હી છાંડે હૈ. કુમાર અવસ્થા વિષય હી દીક્ષા ધારે હૈ તો સર્વોત્કૃષ્ટ ત્યાગી હૈ. જો ભોગી કરી છાંડે તો ભી આશ્ચર્ય નહીં. इन्होंने सामग्री मिलते भी बिना भोग किए त्याग किया सो इनका बड़ा आश्चर्य है. जैसे काहू कई आ गई भोजन धरया और वह बिना खाए वाको छांड गई तो वाका नाम झूठी है. झूठी यानी उसका झूठन. तैसे इन्होंने सर्व विषय बिना भोग किए छोड़े ताते सब विषय इन्होंने झूठी समान किए तिनको हम नमस्कार करे हैं. उच्चिष्टम बताए ना, सोष्टिष्टम। यानी इसे अनंत बार भोग के छोड़े हैं तो ये झूठे हैं, तो इस तरह से उन्होंने लिया होगा शायद। देखते अभी यहाँ क्या कहते। कौमार ब्रह्मचारियों को प्रणाम। जो जीव इन भोगों को न भोग कर पहले से उनका त्याग करते हैं, मानो यानी यहाँ भी कल्पना की, मानो यह दृष्टि रखकर कि इन सब भोगों को अनंत बार भोगा, ये सब भोग तो भोगे हुए होने के कारण झूठे हैं, झूठे झूठे नहीं झूठे, झूठन कहते ना, इन झूठे भोगों में क्या प्रीति करना। यूं जानकर जो पुरुष भोगे बिना ही परिग्रह का, भोग विषयों का परित्याग करते हैं, वे कुमार ब्रह्मचारी है। ऐसे ब्रह्मचारी जनों को, आत्मरमण करने वाले साधु संतों को, व्यवहार चारित्र पालने वाले संतों को हमारा नमस्कार हो। नमस्तस्मै लिखा ना। त्रिविध त्यागी, विधे ने प्रकार के, तीन प्रकार के त्यागी, ये पहले भी बताया था उन्होंने। हाँ, दुनिया में त्यागी तीन प्रकार के होते हैं, जैसा कि इस ग्रंथ में पहले वर्णन किया है। उनमें कुछ तो ऐसे है कि जो पहले भोग सामग्री को संकलित करते हैं और उस भोग सामग्री का उपभोग करते हैं, पर किसी कारण से उससे विरक्ति आ जाए तो उन पदार्थों को छोड़ देते हैं। और कुछ पुरुष महाभाग ऐसे होते हैं, इन भोगों को असार अहित जानकर भोगे बिना ही भोगों का परित्याग कर देते हैं। यह है कौमार ब्रह्मचारी। इन्होंने कुमार अवस्था में ही दीक्षा धारण की है। आज भी ऐसे बालक बालिकाएं पाए जाते हैं जिनको अपने संपूर्ण शील से ही रुचि है। वे किसी दूसरे पुरुष अथवा स्त्री से एक वैवाहिक बंधन बांधकर भी अपने को परतंत्र नहीं रखना चाहते हैं। पुरुष हो वह भी विवाह करने पर परतंत्र हो जाता है, स्त्री हो वह भी विवाह करने पर परतंत्र हो जाती है। यह परतंत्रता भावों की है, प्रीति भाव के कारण यह परस्पर में पराधीनता बनी रहा करती है। जो पुरुष सर्व पराधीनताओं से मुक्त हो जाए उसे साधु पुरुष कहते हैं। साधु है ना, अच्छा। लक्ष्मण के 8 कुमार पुत्रों ने कुमार अवस्था में दीक्षा धारण की थी। ये आगे की बात मालूम नहीं। ये अनेक पुरुष हुए हैं, ये कौमार ब्रह्मचारी सर्वोत्कृष्ट त्यागी पुरुष है। कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जो मरकर ही छोड़ पाते हैं, इन्हें छोड़ते ही नहीं। उच्चिष्टता के सूक्ष्म प्रकार, 92 पेज नीचे से दूसरी लाइन। जैसे किसी पुरुष के आगे भोजन रखा जाए और वह उसे बिना खाए छोड़ दे तो उसे बड़े पुरुष नहीं खाते हैं, यानी उसको किसी को पिरोसा गया था और उसने नहीं खाया, ये बात कह रहे हैं। यह सब भावों की बात है। किसी के सामने पातल परोस दी गई हो, पातल क्या होती है, अच्छा अच्छा जो पत्रावली, वो उसे बिना खाए ही उठ जाए।
महाराष्ट्र में तो बहुत रहता है, बलार का उधर ये उसमें ये
उसको पत्रावली कहते, पत्रावली। पहले तो शादियों में यही वापरते थे, पत्तल पत्तल। मोस्ट इको फ्रेंडली के नहीं, साबु भी, इस साबु से भी क्या सब नुकसान, पानी का भी सब। हाँ, किसी के सामने ये पत्तल परोस दी गई हो और वह उसे बिना खाए ही उठ जाए, तो बड़े पुरुष भी उसे झूठा समझ लेते हैं और उसे नहीं खाते। झूठ नहीं, झूठन, हाँ झूठा झूठन, हाँ यानी वो खोटे के अर्थ में झूठा वो नहीं, हाँ झूठन जिसको कहते हैं, हाँ उष्ट उच्चिष्ट, वह तो अब झूठ के समान हो गया। यह एक दृष्टि की बात है, जैसे किसी पुरुष के गले में फूलों की माला डाल दी जाए तो एक बार गले में वह माला डाल देने के कारण उसे कोई दूसरा पुरुष अपने गले में डालना पसंद नहीं करता है। अभी पुराने जमाने में तो गले में फूलों की माला डालने की पद्धति थी, तो अभी वो उसने डाली तो अभी वो फिर दोबारा यूज नहीं करते। यह सब भावों की बात है, जिसे भोजन में क्या हुआ, अच्छा नहीं पसंद नहीं करता, ऊपर नीचे दोनों जगह वही आया, हाँ वह तो अब अयोग्य हो गई, ऐसा समझकर उसे कोई भी अपने गले में डालना पसंद नहीं करता है। यह सब भावों की बात है, जिसे भोजन में आसक्ति होती है वह तो कुछ भी विचार नहीं करता है, उसे ग्रहण कर लेता है, और जिसे उस भोजन में आसक्ति नहीं है वह उसे झूठा समझकर त्याग देता है। वज्रदंत के पुत्रों का वैराग्य। पूर्व काल में चक्रवर्ती वज्रदंत हुए हैं, वे एक बार सभा में विराजे हुए थे। माली ने आकर राजा के आगे एक फूल भेंट किया, वह कमल का पुष्प था। उसे जब पंखुड़ियों को इधर उधर करके फैलाकर देखा तो उसके अंदर मरा हुआ भंवरा पड़ा था। उस चक्रवर्ती को तत्काल ही वैराग्य उपजा, ओ देखो जैसे यह भंवरा गंध के लोभ में आकर अपने प्राण गंवा बैठा है, ऐसे हम सब संसारी जीव विषयों के लोभ में आकर अपने प्राण गंवा देते हैं। हम आप खुद अपने आप का ही घात करते हैं। उसे विरक्ति हुई तो वह अपने बड़े लड़के से कहता है, हे राजपुत्र तुम राज्य ग्रहण करो, तुम्हारा राज्याभिषेक करेंगे। राज्य हुआ राज्याभिषेक नहीं, राज्याभिषेक। वह बड़ा राजपुत्र बोला, वज्रदंत चक्रवर्ती का पुत्र के पिताजी आप क्यों छोड़कर जा रहे हैं? वज्रदंत ने बताया कि मुझे अब इस वैभव की राजपाट की इच्छा नहीं रही, इसमें ही बने रहे तो आत्मकल्याण से विमुख होकर संसार में जन्म मरण ही बढ़ाते रहेंगे। अब मुझे विरक्ति हो गई, हम इसे छोड़कर जा रहे हैं, इसे तुम ग्रहण करो। तो वह पुत्र बोलता है, जिसे तुम असार जानकर अहितकारी जानकर छोड़कर जा रहे हो उसे हमारे सिर क्यों पटकते हो? यदि हमारे सिर पटक रहे हो तो यह तो कोई न्याय नहीं है। जिस चीज को तुम विपदा समझकर छोड़े जाते हो उस चीज को हम न ग्रहण करेंगे, हम भी तुम्हारे साथ जाकर दैगंबरी दीक्षा ग्रहण करेंगे। दिगंबर से दैगंबर। चक्रवर्ती ने बहुत समझाया, देखो तुम अभी कुमार अवस्था के हो, जंगल के घोर दुखों को तुम न सह सकोगे। तो चक्रवर्ती का पुत्र बोला, पिताजी तुम तो एक मामूली राजा के लड़के हो, हम चक्रवर्ती के लड़के हैं, विचलित नहीं हो सकते। दूसरे लड़के से कहा तो उसने भी ऐसा ही उत्तर दिया, उनके जो कुछ हजार लड़के थे सबका वही उत्तर हो गया। अंत में वज्रदंत चक्रवर्ती ने एक छोटे पोते को जो अभी बच्चा ही था, बोलना भी न जान सकता था, उसके सिर पर राज्यपट्ट बांधकर लोगों को यह कहकर अब तुम लोगों का यह राजा हुआ है, सब छोड़कर चल दिए। वैराग्य की कुछ घटनाएं। तो पहले के जमाने की ना, वैराग्य उस दिन मैंने कहा था ना कि ऐसा कोई राज तिलक है तो हाँ, तो ये मुझे कुछ ऐसा याद था कि जो आप जिसको छोड़कर जाते हो तो वो हमारे लिए कैसे अच्छा हो सकता है। वज्रदंत चक्रवर्ती भी निकालना पड़ेगा, वो कब कौन से नंबर के थे वज्रदंत चक्रवर्ती। वैराग्य की कुछ घटनाएं। वैराग्य के कारणों में अन्य भी ऐसी घटनाएं होती है। एक कमल के फूल में मरे हुए भंवरे को देख लिया, वैराग्य हो गया। सिर का केश सफेद देखा, देख लिया, वैराग्य हो गया। अब तो किसी के वैराग्य की बात चित्त में नहीं समाती। लोग पशुओं की जान से खेल खेलते हैं। किसी कुत्ता बिल्ली को कड़ी धूप में बांध दिया तो वह चिल्ला रहा है, प्यास के मारे तड़प रहा है, फिर भी उसे देख देख कर लोग मौज मानते हैं। अनेक घटनाएं दुखद देखते सुनते हैं, फिर भी कभी चित्त में वैराग्य की बात नहीं समा पाती। किसी को उड़ते हुए बादल दिख जाने से ही वैराग्य हुआ था, यानी कुछ ऐसे शेप दिखते ना शाम को और देखते देखते वो बिखर जाते हैं, तो अरे ये ऐसा ही है, हाँ वैराग्य हो गया। अभी तो महल की छत पर खड़ा हुआ था बादलों से बने हुए मंदिर का फोटो लेने के लिए, छत से नीचे कैमरा या पेंसिल लेने आया। इतने में ही वहां पर जाकर देखता है कि सारे बादल बिगड़ गए हैं, इधर उधर उड़ गए, बस उसके वैराग्य आ गया। सोचा कि जैसे बादल शीघ्र ही बिगड़ गए, ऐसे ही ये धन वैभव सारे समागम शीघ्र ही बिगड़ जाते हैं। ऐसे ऐसे अनेक कारण होते हैं। देखो अंतरंग में वहां उसकी ऐसी जो तैयारी होती है, तो बाह्य में ऐसा कोई भी चीज देखकर उसके तो पुष्ट हो जाता है वो वैराग्य। भोग परित्याग के बिना शांति की असंभवता। जो पुरुष भोगों को भोगे बिना, स्वीकार किए बिना त्याग देते हैं, वे पुरुष कुमार ब्रह्मचारी हैं। जो भोग कर छोड़े तो भी भला है, इसमें कुछ विशेष आश्चर्य की बात नहीं है। यह गृहस्थी में सादा खाना, सादा पहनना, सादे रहन सहन से रहना, यह भी एक त्याग का रूप है। वे तो सर्वोत्कृष्ट त्यागी है जो भोगों को भोगे बिना ही उनका परित्याग कर देते हैं और आत्म ध्यान में ही अपनी बुद्धि लगाते हैं। ऐसा स्मरण कर करके हमें यह भावना करना चाहिए कि भोगों का परित्याग करें, तभी हमें शांति का मार्ग मिलेगा। 110 नंबर। अकिंचनो हमित्यास्व, डबल स्व क्यों, क्या त्रैलोक्याधिपतिर भवे हे योगी गम्यम तव प्रोक्तम रहस्यम परमात्मनः। पढ़ेंगे इसको। अकिंचनोहमित्यास्व त्रैलोक्याधिपतिर्भवे योगी गम्यम तव प्रोक्तम रहस्यम परमात्मनः। यहाँ का अर्थ पढ़ती हूँ मैं, रुद्रमल जी का। मैं अकिंचन हूँ, किछु भी मेरा नाही। अकिंचन यानी सबसे रहित, हाँ जुदा। ऐसे भावना करी तू तिष्ठी, यानी तू ऐसे भावना करो। ऐसे भावना किए शीघ्र ही तू तीन लोक का स्वामी हो है। क्या कहते हैं, यानी विरोधाभास बताए ना, मेरा कुछ भी नहीं ऐसा सोचेंगे यानी ऐसी भावना करते रहेंगे तो तीन लोक का स्वामी हो जाएगा। यहू योगीश्वरनी के गम्य, ऐसा परमात्मा का रहस्य तो को कहा है। यानी ये जो ऐसी अद्भुत लगती है ना बातें, जो कुछ नहीं कहने वाला वो सब पूरा तीन लोक का स्वामी बन जाता है, तो ये तो रहस्य है। भावार्थ, अज्ञान तातई पर विषय ममत्व है और अपना हो ही ना ही याही ते हीन दशा को प्राप्त हो ही रहा है। बहुरी जब यह भावना होई जो कोई परद्रव्य मेरा नाही, तब यह परम उदासीनता चारित्र रूप होई ताके फलते तीन लोग जाको अपना स्वामी माने ऐसा पद को पावे। यह रहस्य योगीश्वर जाने हैं, सो हम तो को कहा है। तू भी ऐसी ही भावना करी ऐसे हम शिक्षा दई है, ये तुझे ऐसी सीख दे रहे हैं। अभी यहां प्रवचन पढ़ते हैं। परमात्मा तत्व का रहस्य। हे सम्यक दृष्टि पुरुष, देख धीरे से सुन, तुझे आज परमात्मा का वह रहस्य बतावेंगे जो योगियों के द्वारा गम्य है। जिस रहस्य को योगीराज चिरकाल तक यानी लंबे काल तक तपश्चरण और संयम करके अनुभव से जानते हैं, वह परमात्मा का रहस्य क्या है? तो कहते परमात्मा तत्व की प्राप्ति का उपाय क्या है? तो मैं अकिंचन हूं, अर्थात मेरा मेरे सिवाय अन्यत्र कहीं कुछ नहीं है। ऐसा निर्णय करके तो विश्राम सहित अपने ही एकत्व में अकड़ कर रह जा। जिसे देहात में बोलते हैं टन्ना कर रह जा, अकड़ कर रह जा, ऐसा टन्ना कर रह जा। जैसे कभी कोई बच्चा किसी बात पर हट करता है, वह उस हट के प्रसंग में एक चुपचाप वाली अकड़ से रह जाता है, ऐसे तू अपने को यह जानकर कि मैं अकिंचन हूं, मेरा अन्यत्र कहीं कुछ नहीं है, तो अपने में विश्राम करके रह जा। यह योगी गम्य परमात्म तत्व की प्राप्ति का उपाय कहा गया है। परमात्म नहीं, परमात्म। ज्ञानानुभव का प्रसाद। ज्ञानी विरक्त संत योगी बनकर जंगल में और क्या क्या करते हैं? एक अपने आप को ज्ञान मात्र, सबसे निराला, केवल ज्योति प्रकाशमय निरखते हुए एक निष्पंद बन जाता है। उस समय संकल्प विकल्प हट जाने के कारण अपने आप में एक उत्तम ज्योति प्रकट होती है, सहज आनंद जागृत होता है। उस स्थिति में तू परमात्मा का रोज अनुभव कर सकता है। इस जीव पर कुछ मानने का घोर संकट है, इन कुछ न कुछ मानते रहता है, कल्पनाएं करता है, मेरा कुछ है नहीं और मान लिया कि मेरा है। इस कारण यह संसारी प्राणी रुल रहा है। कभी ऐसी बात समझ में भी आती है, फिर भी उस मार्ग पर नहीं डर पाते हैं। मोह का क्लेश। यह मोह करना बुरा है, दुखदाई है, संसार में रुलाने वाला है और इसी भव में बारंबार रुलाने वाला है। कहीं किसी दूसरे जीव के मोह में शांति नहीं मिला करती। दूसरे जीव भी तो कषायवान है, उनकी भी उनमें हट है, उनके भी दिल है, वे भी आजादी पसंद है। तुम करोगे दूसरे जीवों में मोह, तो भले ही तुम चाहो यह कि मैं जैसा चाहूं तैसा ये जीव परिणमा करे, पर यह कैसे होगा? तब पराधीनता का क्लेश स्पष्ट ही है। कहीं भी तो सुख नहीं है संसार में, किसी भी स्थिति में सुख नहीं है। कुछ धनिक हो गए तो क्या शांति मिल गई? बड़ी खुशी में इतने संगीत समारोह करके, बड़े नाच गान करके खुश हुआ जा रहा है, वहां भी भीतर में देखो तो वही आकुलता है, खुशी नहीं है। आकुलता खुशी के रूप में भी फूटती है और विषाद के रूप में भी फूटती है। क्या कहा, ये खुश 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 हो रहा है ना बाहर की, इसमें ये भी आकुलता है कहते हैं। ये खुशी जो हर्ष बाहर का जो है, हर्ष हो या विषाद, ये दोनों एक क्षोभ परिणाम है ना। हाँ, क्या कहते हैं, आकुलता खुशी के रूप में भी फूटती है और विषाद के रूप में भी फूटती है, दोनों ही आकुलता है। कौन निराकुल है? जो खुश है वह भी व्याकुल है और जो शोक मग्न है वह भी व्याकुल है। किसी जीव को यहां वहां कहीं से ढूंढकर ऐसा तो लाओ जो परिपूर्ण से निराकुल हो, पूर्ण रूप से निराकुल हो। निर्व्याकुल तो एक भगवान ही है। आत्म विश्राम का यत्न। हे आत्मन, मैं अकिंचन हूं, ऐसा अपने आप में विचार करके तू परम विश्राम सहित निष्पंद होकर ठहर जा। यानी वहां विकल्प उठाने की भी जरूरत नहीं, बस शांत हो जा अंदर ही अंदर। देख यह एक ऐसा परमात्मत्व की प्राप्ति का राज है। परमात्मत्व त्व वक्त्व के बदले वो त्य जैसा दिख रहा है, त्व परमात्मत्व लिखा है, परमात्म तत्व। देखिए एक ऐसा परमात्म तत्व की प्राप्ति का राज है कि जिस राज में परम आनंद बसा हुआ है। रहस्य कथा ना, राज राज ने राज अज्ञान भाव के कारण पर पदार्थों में ममत्व हुआ करता है। वह ममत्व भले ही करे कोई, किंतु कोई पदार्थ अपना कभी होता नहीं है। यानी वह तो व्यर्थ है, फूल है। स्पष्ट देख लो, हाथ में पकड़कर देख लो, अपने ही शरीर को या ग्रह के वैभव को देख लो, कभी अपना होता है क्या? प्रकट न्यारा है, स्वरूप चतुष्टय भिन्न भिन्न है। ये स्वरूप चतुष्टय क्या होता है? द्रव्य क्षेत्र काल भाव, ये अपना अपना भिन्न भिन्न है। न मेरा गुण अन्य में है, न मेरा परिणमन अन्य में है, और न मेरा बड़प्पन अन्य में है, न मेरा किसी पर अधिकार है, न किसी पर स्वामित्व है। ऐसा प्रकट निराला जगत है। मैंने प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र है, निराली है, अपने अपने में है, स्वयं पूर्ण है, ये भी उतनी ही बात है। इसमें आत्मत्व भाव यानी उसमें मैं पने का भाव अज्ञान से ही होता है, और यह अपना होता है नहीं तब यह जीव बड़ा व्यग्र होता है। यानी वो उसे अपना मानता है और वो पर चीज अपनी होती नहीं है, तो ये बहुत व्याकुल होते हैं, हीन दशा को प्राप्त होता है। इस मोही जीव ने अपने हृदय में उत्सुकता तो यह भरी है, यह वस्तु मेरी है, मेरा इस पर पूर्ण अधिकार है, और वस्तु स्वरूप के कारण निकला वह अनाधीन, तब बड़ी व्यग्रता होती है। ओ, मैंने इतने कष्ट सहे, विकल्प किया, प्रयत्न किया, और यह जीव या यह पदार्थ मेरे अनुकूल नहीं परिणम रहा है। देख, सारे संकटों से मुक्त होना हो और इस भव में भी यदि तुझे अपने को निर्व्याकुल अनुभव करना हो तो मैं अकिंचन हूं, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, ऐसा तू केवल निज ज्ञान पुंज अपने को निरख। इस उपाय के बिना तुझे शांति का कोई ढंग न मिलेगा। परभाव से विविक्तता की भावना। परभाव में पर के भाव या पर को देखकर अपने में उठने वाले राग आदि, उसको भी परभाव यहां क्या कहते देखेंगे। विविक्तता ने उससे हम जुदे हैं, यानी ज्ञान और राग जुदा है, ये कहना चाहते हैं। ज्ञानी जीव के यथार्थ भावना होती है कि कुछ भी परद्रव्य मेरा नहीं है। धातुओं में सब धातु, शरीर में सब शरीर, और की तो बात क्या, भावों में अपने ही विचार, राग द्वेष विकल्प, ये भी अपने नहीं है। ये समस्त पर होते हैं, बिगड़ जाते हैं, कोई परिद्रव्य मेरा नहीं है। ऐसा जब परिणाम हो तो परम उदासीनता प्रकट होती है। परम उदासीनता ने उपेक्षा भाव, न राग न द्वेष। इसी उदासीनता का नाम है चारित्र। ये उदासीन ने वो क्या मुंह लटका के, वो उदास नहीं है। वो उदास होना वो बात अलग है। हाँ, ये तो ये उदासीनता परम यानी अच्छा का है ना। इस चारित्र के फल से देख तू तीन लोक का अधिपति हो जाएगा। अपने को अकिंचन मानेगा तो तीनों लोक का मालिक बन जाएगा, और अपने को यहां किसी का कुछ मालिक मानेगा तो हीन दशा में रहकर संसार में जन्म मरण पाएगा। देखो कितना पुष्ट किंतु सुंदर निर्णय है। यानी उल्टा जो विरोध बता रहे ना, यहाँ किसी ये मैं इतने चीजों का मैं मालिक हूं, तो कहते तू हीन दशा को प्राप्त करेगा, और मैं अकिंचन हूं बिल्कुल सबसे छोटा है, तो तीन लोग का मालिक हो जाएगा ये कह रहे। मान की चाह में सम्मान का अलाभ, यानी जो मान चाहता है उसको सम्मान नहीं मिलता ये कहते हैं। कोई पुरुष मान का अर्थी हो, अर्थी हो यानी मान को चाहने वाला है, मुझे सम्मान मिले, यो वह सम्मान का अर्थी आगे आगे तुरैया सी छोंकता हुआ अपने ही मुख से अपनी बड़ाई करता हुआ बिना ही बुलाए बिना ही लोगों के आदर किए सबसे आगे उठता बैठता हुआ जो पुरुष चेष्टा करता है उसे कभी सम्मान मिला है क्या? जो अपने मुंह अपनी बड़ाई करता है उसे लोगों के द्वारा बड़ाई मिलती है क्या? बड़ाई तो मिलेगी उसको जो अच्छा काम करेगा। अच्छा काम करके जो अपने मुख से बड़ाई कर ले उसको कभी बड़ाई नहीं मिलती। सम्मान का अर्थी अपनी बड़ाई के लिए बड़ी चेष्टाएं करता है, पर अंत में उसे सम्मान की जगह पर अपमान ही प्राप्त होता है। योगी गम्य परमात्मत्व ही कह रहे हो, परमात्मत्व नहीं परमात्मा तत्व वैसा भी कह सकते हैं, परमात्मपना परमात्मत्व ने परमात्मपने की विधि। जो पुरुष परोपकार के कार्य करके भी अपने को न कुछ नम्र विनयशील गर्व रहित सबका अनुयायी पीछे ही पीछे उठने बैठने चलने वाला पुरुष है, वह पुरुष दूसरों के द्वारा सम्मान को प्राप्त होता है। ऐसे ही जानो कि जो पुरुष अपने आप को अकिंचन मानकर नम्र विनयशील अपने आप के स्वरूप में रमकर संतोष करने वाला होता है वह तीनों लोकों का अधिपति अर्थात जिनेन्द्र देव होता है, और जो अपनी ही कल्पना में जगत में अपने को कुछ मानता है उसको ही दशा में रहकर संसार में रूलना पड़ता है। कौन सी दशा में? यह सारा रहस्य योगेश्वर जानते हैं भली प्रकार से। आत्म प्रयोक्तृत्व में ज्ञातृत्व आत्मा में प्रयोग कर रहा है ना। जिनको तात्विक ढंग से यह मर्म न उतरा हो वे पुरुष बातें भले ही कर ले किंतु वे ज्ञाता नहीं कहलाते। बोलना सीख जाते हैं, ज्ञाता नहीं बने हैं वो। जैसे तैरने की कला जानने वाला जो तैर कर अनुभव कर चुका है उसे ही तैराक कहेंगे। किताबी ढंग में जो लिखा है विधि है उस तरह का अभ्यास कर लेने वाला उसका ज्ञाता न कहलाएगा। ये क्या कहते हैं उसकी केवल वो तो उसकी तो थियोरी समझ तो हाँ बोलना सीख गया शास्त्र समझ लिए तो कहते उसको ज्ञाता नहीं कहेंगे। भला देखो कोई पुरुष रोटी बनाना रोज देखता है ताजी ताजी रोटी रोज बनती है वह पुरुष खाता जाता है सारी बातें देखता जाता है। इस तरह आटा गूथा इस तरह लोई बनाई इस तरह बेला इस तरह तवे पर रखा इस तरह उल्टा अग्नि पर सेका खूब देख रहा है रोज रोज वह पुरुष मानो 25 वर्ष हो गए देखते देखते। एक दिन ऐसा आ जाए कि खुद ही रोटी बनाना पड़े तो वह रोटी न बना सकेगा। यद्यपि 25 साल हो गए रोज देखते हुए और वह दूसरों से रसोई बनाने की बात बड़े अच्छे ढंग से पूरी पद्धति से कह डालेगा यो आटा गुनो, यो रोटी पकाओ, सब कुछ बता डालेगा, पर खुद को बनाना पड़े तो न बना पाएगा। तो क्या उसे रोटी बनाने की विधि का ज्ञाता कहा जाएगा? तो ढंग से, अनुभव से तो ज्ञाता न कहलाएगा। ऐसे ही मैं अकिंचन हूं, मेरा जगत में परमाणु भाव भी कुछ नहीं है, मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूं, इतनी ही बातें करने वाले इस मर्म के ज्ञाता नहीं कहला सकते। भले वो बाहर में बोले या विकल्प रूप से, अंदर ही अंदर जल्प रूप से करेंगे तो उसको ज्ञाता नहीं कहेंगे। किंतु जो अपने उपयोग को ऐसा बनाकर इस तत्व ज्ञान के अमृत का पान करके संतुष्ट हुए हैं, उन्हें इस कला के ज्ञाता कहेंगे। यानी ये प्रयोग की बात है अपने आप में। बाहर तो कुछ करना ही नहीं ना, ये सब बातों में ही हो रहा है। अकिंचन और सकिंचन की मान्यता का प्रभाव। हे आत्मन, मैं वैभववान हूं, मेरी इतनी इज्जत है, इसी बात को दिल में धारे हुए क्या तू शांति पा रहा है? अरे इन क्षणिक इन विकल्पों के भार को तू अपने उपयोग से हटा तो दे। कुछ क्षण एक बार भी तो अपने को अकिंचन अनुभव कर। देख फिर तुझे कितना आनंद जगता है। एक बात और भी है, जो अपने को अकिंचन मानेगा, बाह्य पदार्थों में तृष्णा लोभ लालच न करेगा, उसके पुण्य रस स्वयं में वह अधिक बढ़ता है, पापों का क्षय होता है और कुछ ही समय बाद वह समता से भी भरपूर हो जाता है। अपने को अकिंचन मानने में सभी गुण हैं और सकिंचन मानने में विडंबना ही बनती है। मैं हूं कुछ ऐसा मानने में विडंबना ही बनती है। मैं तू तू का फल। एक कोई नटखटी लड़का था, कई जगह नटखट करता गया। एक बार पाव भर गुलाब जामुन लेकर गांव के किनारे गया, जहां तालाब में एक धोबी कपड़े धो रहा था, उसका लड़का भी था। उस नटखटी लड़के ने उसे दो चार गुलाब जामुन खिला दिए। अब तो वह रोने लगा कि मुझे और चाहिए। धोबी ने पूछा कि तुमने इसे क्या खिला दिया? तो उसने कहा, गुलाब जामुन। ये कहां मिलेंगे? इस पास के ही बागों में चले जाओ, जितने चाहे तोड़ लाओ। धोबी ने कहा, अच्छा भाई, तुम मेरा सामान देखे रहना, मैं इसे गुलाब जामुन तोड़कर खिला लाऊं। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? वह नटखटी लड़का बोला, मेरा नाम है कल परसों। वह तो पास के बागों में अपने सारे बर्तन कपड़े वगैरह उसको जताकर चला गया। उस नटखटी लड़के ने क्या किया, वह उसका सारा सामान लेकर चंपत हो गया। जब वह धोबी लौटकर आया तो चिल्लाने लगा, अरे कल परसों मेरा सामान ले गया। लोग कहते हैं, अरे बेवकूफ, कल परसों सामान ले गया तो आज क्यों रोता है? वह नटखटी लड़का आगे बढ़ गया। रास्ते में घुड़सवार मिला। घुड़सवार बोला, भाई हमें प्यास लगी है, अपना डोर लोटा दे दो और मेरा घोड़ा पकड़ लो, हम पानी कुएं से भरकर पी ले। अच्छा भाई, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है कर्ज लेने में। वह तो पानी पीने चला गया और वह लड़का उस घोड़े को लेकर चंपत हो गया। घुड़सवार रोने लगा, चिल्लाने लगा, हाय, मेरा घोड़ा कर्ज लेने में ले गया। लोग सुनने वाले कहते, अरे बेवकूफ, कर्ज लेने में घोड़ा ले गया तो क्या बुरा किया? तूने कर्ज क्यों न चुकाया? वह नटखटी लड़का आगे किसी नगर में पहुंचा, वहां एक दुनिया के घर पहुंचा। दुनिया तो घर पर था नहीं, उसकी औरत थी। वह लड़का दुनिया की औरत से कहता है, आज रात को अपने घर मुझे ठहर जाने दीजिए, सुबह चले जाएंगे। अच्छा, ठहर जाओ बाबूजी। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है तू ही तो था। ठहर गया वह। पास में एक बनिया के घर से घी आटा दाल वगैरह सारा सामान लिया और कहा कि सुबह पैसे चुका देंगे। अच्छा तुम्हारा नाम क्या है बाबूजी? हमारा नाम है मैं था। उसने दुनियाओं के घर भोजन बनाया खाया और जो कुछ धोवन था वह दुनिया की रुई में डालकर सवेरा होते ही चला गया। जब दुनिया आता है तो देखता है कि सारी रुई खराब हो गई है। औरत से पूछता है कि किसने इसे खराब किया, कौन यहाँ रात को ठहरा था? दुनिया की औरत ने कहा, जो ठहरा था तू ही तो था। उसने उसे पीटना शुरू किया, सच बता कौन था? तू ही तो था। खूब पीटी। बनिया ने उसे पीटते देखा तो उसकी दया आ गई। बनिया आकर बोला, अरे जो ठहरा था वह मैं था। लो बनिया भी पीट गया। जो बाहरी बातों में मैं मेरा करता है उसको विडंबना ही नसीब है। हे जिनेंद्र देव के भक्त, जिनेंद्र की भक्ति के प्रसाद से तो अनंत सुख पाएगा। तो अपने आप को इस देह से न्यारा, केवल ज्ञान पुंज अपने आप को निरख। प्रभु भक्ति वास्तव में इसी में है। यही तो प्रभु भक्ति है। अपने आप को सबसे न्यारा, केवल ज्ञान पुंज मान ले। क्या है यह वैभव? तो मिटने को ही है। चाहे जब मिटे, वियोग तो होगा ही। इसमें आसक्ति न करके एक अपने आप में अपना शुद्ध प्रकार पाए। मैं अकिंचन हूं ऐसा मानकर तू ठहर तो जा। विश्राम मानकर अपने में देख, तू तीन लोक का अधिपति हो जाएगा। यह परमात्मा प्राप्ति का राज रहस्य, जिससे बड़े बड़े योगी राज परमार्थ तपश्चरण को प्राप्त करते हैं, यह रहस्य तुझे कहा गया है। यह परमार्थ तपश्चरण अंतरंग में लीनता। त्रिलोकाधिपतित्व का यत्न, यानी त्रिलोकाधिपति, तीन लोक का स्वामी। परमात्मा तत्व का यह रहस्य कैसे मिलेगा? वस्तु स्वरूप का ज्ञानाभ्यास करे। जिसको भी देखो उसे पूर्ण स्वतंत्र देखो। कोई भी जीव यदि किसी के अधीन बन रहा है तो वह स्वतंत्र होकर पर के अधीन बन रहा है। क्या कहा? वो स्वतंत्रता से पर के अधीन बन रहा है। देखे क्या फिर पढ़ते? कोई भी जीव यदि किसी के अधीन बन रहा है तो वह स्वतंत्र होकर पर के अधीन बन रहा है। हाँ, ये कौन सा नए बताया है? 47 नए में। ईश्वर नए है ना, वो तो धाव माता का, वो तो बालक का। हाँ हाँ, स्वतंत्रता से, स्वतंत्र होकर पर के अधीन बन रहा है। पर के अधीन बनने की बात तो त्रिकाल हो ही नहीं सकती। कोई जीव किसी दूसरे जीव के अधीन कभी बन ही नहीं सकता। वस्तु के स्वरूप में ही नहीं है यह बात। जो जीव दूसरे के अधीन बन रहा है वह अपनी कल्पना में, अपनी कल्पनाओं द्वारा, अपनी कल्पनाओं के अधीन बन रहा है। कोई जीव किसी दूसरे के अधीन बन ही नहीं सकता है। देख, यह स्वाधीनता का मार्ग, परमात्मा तत्व की प्राप्ति का राज तुझे कहा है। त्रिलोकाधिपतित्व का यत्न। हे आत्महितार्थी पुरुष, तू प्राप्त इसी ही भावना कर। मैं अकिंचन हूं, मैं अकेला हूं, मेरा कहीं कुछ नहीं है। जब मेरा कुछ नहीं कहता तो ये किस रूप से अपने को देख रहा है? नहीं, ये मनुष्य, ये मैं हूं और मैं बेचारा अकेला हूं और अपने को बेचारा मानता है। किसी को अकेला देख अपने को अकेला, तो मैं बेचारा अकेला, बिचारा है ने क्यों, ये शरीर, ये मनुष्य मैं हूँ, ये शरीर रूप मैं हूँ और मैं बिचारा अकेला हूँ, ऐसा सोचता है। यहाँ कहते मैं है ना, ये मैं ज्ञान पुंज मैं हूँ और वो सबसे निराला हूँ, मेरा कहीं कुछ नहीं है। देख यह एक तेरा घर का मंत्र है, अपने आत्मा भगवान से मिलने का उपाय है कि मैं अकिंचन हूँ। कहे हो या मैं ज्ञायक हूँ, जिस किसी रूप में आप कहेंगे, यहाँ तो अकिंचन की बात उठाई है। तू बार बार ऐसी सत्य भावना तो कर, ये जो अन्य तो कल्पना ही करता है मैं मनुष्य हूँ मनुष्य हूँ मनुष्य हूँ, और वही बात उसके प्रतीति में है जन्म से लेकर, जिस शरीर में पैदा हुआ उस रूप में हूँ। इसलिए कहते सत्य भावना तो कर कि मैं अकिंचन हूँ, अकेला हूँ, मेरा कहीं कुछ नहीं है, मैं सबसे निराला हूँ। इसकी बड़े योग उपयोग से अपने आप में खोज तो कर, स्वतः एक ऐसा अपूर्व आनंद उत्पन्न होगा, आह्लाद होगा, जिसके प्रताप से तू सहज आनंद में तृप्त हो जाएगा। तू धीरे से सुन, गंभीरता से सुन, तुझे तेरे खास कान में बात कही जा रही है, जिसको नहीं कोई बड़ा रहस्य, जिसकी बड़ी निधि की बात बता रहे हैं, तो कहते तू गंभीरता से सुन। तू अपने आप को अकिंचन मानकर सबसे निराले रूप से ठहर तो जा, तू तीन लोक का अधिपति हो जाएगा। इस प्रकार ज्ञान भावना के लिए आचार्य देव ने हम लोगों को उपदेश दिया है। चाहे परिस्थिति कुछ हो, कर्तव्य कुछ हो, पर सच्ची श्रद्धा से दूर न भागो। मैं निर्मल हूँ, अकिंचन हूँ, यानी अकिंचन ही हूँ, ज्ञान मात्र ही हूँ, ऐसी अपनी श्रद्धा बना तो तू संकटों से यथाशीघ्र पार हो जाएगा। अभी 111 को देख लेते हैं। दुर्लभम, अशुद्धम, अपसुखम, अविदितम, रति समयम, अल्प परमायुः, मानुष्य मिहैव तपो मुक्तिस तपसैव, यानी तपसाएव तत्तपः कार्यम्। दुर्लभम, अशुद्धम, अपसुखम, मविदितम, रति समयम, अल्प परमायु, मानुष्यमिहैव तपो मुक्तिस्तपसैव तत्तपः कार्यम्। यहाँ का अर्थ पढ़ते हैं, मनुष्य पर्याय है सो दुर्लभ है, अपवित्र है, सुख रहित है, मरण समय जाका न जानी ऐसा है, कभी भी आ सकता है मरण। उत्कृष्ट आयु भी जाका अल्प है ऐसा है, यानी उत्कृष्ट आयु का धारे अरे वो भी कुछ नहीं है। बहुरी तप है सो इस मनुष्य पर्याय विषय ही हो है, बहुरी मुक्ति है सो तप ही करी हो है, यानी तप से ही मुक्ति होती है और तप इस मनुष्य पर्याय में होता है। ताते मनुष्यपणो पाई तो को तप करना योग्य है। भावार्थ, आत्मा का हित मोक्ष है ताकि प्राप्ति तप बिना नाही। जाते समय दर्शन ज्ञान चारित्र पूर्वक तप आराधना को आराधय तो साक्षात मोक्ष मार्गी होई। बहुरी तप है सो मनुष्य पर्याय विषय ही हो है सो अन्यत्र भी कहा है, यानी अन्य उद्धरण दिया है उन्होंने यहाँ पर। देव विषय पसत्ता नेरय्यातिव दुःख संतत्ता तिर्याभिवेय वियला मनुयाणम धम्म संपत्ति। उसका अर्थ ऐसा करते हैं, देव तो विषयासक्त और नारकी तीव्र दुख करी तप्तायमान, तिर्यंच विवेक रहित, तातई मनुष्य ही नहीं के धर्म की प्राप्ति है। बहुरी, मनुष्य पर्याय बारंबार होई तो पाया पर्याय विषय, तप न किया तो आगे करे। सो अनंतानंत काल भये भी मनुष्य पर्याय पावना दुर्लभ है। क्या कहना चाहते हैं? यदि मनुष्य पर्याय बारंबार होती तो अभी नहीं किया तो नेक्स्ट आगे करेंगे। तो कहते ऐसा भी हो सकता है अनंत काल में मनुष्य पर्याय न हो, ये भी हो सकता है। बहुरी, देववत यहा सुख होई तो सुख को छोड़ी तप करना कठिन होई। सो यहाँ शारीरिक मानसिक दुख ही की मुख्यता है। क्या कहना चाहते? यदि मनुष्य पर्याय बारंबार मिलती तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम कर लेते, एक बात हो गई। दूसरी बात, यहाँ अगर सुख होता देव जैसा तो सुख छोड़कर तप करने को कोई नहीं कहता। तो कहते वैसा भी नहीं है, शारीरिक और मानसिक आकुलता तो बहुत बड़ी है। दुख को छोड़ी तप करने विषय खेद कहा? दुख को छोड़कर कर तप करने में क्या खेद कहाँ है वहां पर? बहुरी, जो मनुष्य का सुंदर शरीर होई तो ताके विगारने का भय होई। सो धातु उपधातु नी करी निब्जा महापवित्र या को तप विषय लगावने का भय कहा? यानी अगर मनुष्य शरीर बहुत सुंदर होता तो तप से उसको बिगाड़ने का भय रहता किसी को? ये धातु और उपधातु से रचा हुआ ये जो शरीर है अपवित्र है, इसको तप में लगाने से क्या भय है? बहुरी, देववत मरण का निश्चय होई तो कितने काल तो निश्चिंत रहित पीछे तप करिए। क्या कहते हैं? जैसे देव में क्या होता है, अंतिम 6 महीने में तो आयु बंद होता है, वो पता चलता है भी 6 महीने में मरण आना है, तो बिल्कुल तब तक तो निर्धास मजा करते रहते, सुख वहां का सुख भोगते रहते हैं। ऐसा यदि यहाँ होता तो भी समझते हैं ना कि हाँ चलो इतना करेंगे बाद में तप करेंगे, परंतु उसका भी कोई निश्चय नहीं है। फिर पढ़ते, देववत मरण का निश्चय हो तो, क्योंकि मरण कब होना है वो उनको पता है, कितने काल तो निश्चिंत रहिए पीछे तप करिए। तो मनुष्य के मरने का निश्चय ना ही कब मरे? बहुरी, जो उत्कृष्ट भी आयु बहुत होई तो मेरा उत्कृष्ट ही आयु होगा ऐसा भ्रम करी ढील करिए, सो उत्कृष्ट आयु भी थोड़ा। ताते मुझको प्रमादी न होना, सावधान होई तप ही करना योग्य है। हाँ, 111 नंबर को पढ़ते अभी हम, पहले उसको यहाँ से जांचते हैं। 111 नहीं, अभी हम निशा अभी पढ़ा, यहाँ से पढ़ना है, प्रवचन पढ़ना है। तप के लिए मनुष्य भव की विशेषता, 2 मिनट है अभी बस, ठीक, एक पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। यह मनुष्य जन्म दुर्लभ जन्म है, किंतु अपवित्र है, सुख रहित है, जिसमें मरण का समय नहीं जाना जा सकता, ऐसा है ना। दुर्लभम अशुद्धम अपसुखम अविदितम मृति समयम, अविदितम मृति समयम यानी मरने का समय जान नहीं सकते, और अल्प परमायु, उत्कृष्ट आयु भी उसके लिए अल्प है। यानी जैसे सागरों जैसे पल्लों जैसे तो नहीं है, ये भी संख्यात वर्षों की है, मरण समय नहीं जाना सकता, ऐसा अविदित मरण समय है। यहाँ उत्कृष्ट भी आयु हो तो भी अल्प है, ऐसी तो इस मनुष्य भव की स्थिति है। और यहाँ बात यह है कि तब मनुष्य पर्याय में तप, तब नहीं तप, मनुष्य पर्याय में ही होता है, ब का प करना, तप मनुष्य पर्याय में ही होता है, मुक्ति तप से ही मिलती है। तब मनुष्य पर्याय प्राप्त करके हे कल्याणार्थी पुरुष, तुझको तप करना ही युक्त है। 111 में तीसरी लाइन है ना, तब का तप करना, यहां बात यह है कि तप मनुष्य पर्याय में ही होता है। इसमें जो विशेषण दिया गया है यह बहुत मर्म बताने वाला है। ये सारे विशेषण बताए ना, देखिए मनुष्य जन्म का मिलना अति दुर्लभ है और ऐसे दुर्लभ मनुष्य जन्म में बहुत उत्कृष्ट कार्य हो सकता है तो उसे कर लेना चाहिए। धर्म का उत्कृष्ट पालन इस मनुष्य भव में ही हो सकता है। यही रुकेंगे हम। जावाणी के ज्ञान से तुझे लोकालो सोवाणी मस्तक न सदा देख हो।